आरव माहिरा के साथ रिजॉर्ट में था। पूरी रात पार्टी के बाद दोनों अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे थे। दोनों चेहरे से काफी थके हुए लग रहे थे। आरव इरिटेट होकर बोला, सीरियसली माही, ये जरूरी था क्या? मुझे सोना था यार, पूरी रात पार्टी करने के बाद ट्रैवल कौन करता है यार? हम करेंगे बेबी, बोलते हुए माहिरा ने आरव के हाथ में कॉफी मग बिखड़ा दिया। लो, तुम इसे पियो। आरव ने उसके हाथ से कॉफी मग लेकर साइड रख दिया। वो थके हुए स्वर में बोला, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई नीड अ गुड स्लीप ओनली। हाँ, मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो, लेकिन तुमने पार्टी की ही कब थी? तुम तो बोरिंग इंसान की तरह ही कोने में बैठे थे, यहाँ तक कि ड्रिंक भी नहीं ली। फ्लाइट में सो जाना, पर अभी हमारी कुछ देर में लंदन के लिए फ्लाइट है। वहाँ कुछ दिन वेकेशन एंजॉय करेंगे, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा तो वापस भी आ जाएंगे, माहिरा ने प्यार से कहा। मालदीव्स में दो दिन बिताने के बाद माहिरा आरव को लंदन ले जाना चाहती थी। यहाँ आना ठीक था क्योंकि ये जगह इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लंदन काफी दूर हो जाएगा। मैंने दादी को भी नहीं बताया, उनकी हेल्थ सही नहीं रहती, आरव ने माहिरा को समझाते हुए कहा। उसका लंदन जाने का कोई मूड नहीं था। अब तुम बच्चे नहीं रहे जो हर चीज के लिए अपनी दादी से परमिशन लो, माहिरा ने नाराजगी जताई। जानता हूँ बच्चा नहीं हूँ, पर मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। हम थोड़े दिन यहीं पर रुकते हैं ना, क्या जरूरत है लंदन जाने की, आरव बोला। वो प्यार से माहिरा को समझने की कोशिश कर रहा था। माहिरा ने ना में सिर हिलाया और बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, हम लंदन जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, अभी कुछ देर में हमारी फ्लाइट है। आरव के पास उसकी बात मानने का और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ देर चुप रहने के बाद माहिरा से कहा, लाओ मुझे मेरा फोन दो, मैं एक बार कबीर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। पीछे से सब कुछ उसे ही मैनेज करना है, दादी से भी बात नहीं हुई, उन्हें ठीक से सब नहीं बताया तो मेरे आने पर वो नाराज होंगी। मैंने कबीर को बोल दिया है हमें आने में टाइम लगेगा, तब तक वो सब देख लेगा, एंड डोंट वरी, वो दादी को भी संभाल लेगा, माहिरा ने जवाब दिया। वो अच्छे से जानती थी कि अगर आरव ने गौरवी जी से बात की तो वो उसके साथ लंदन जाने के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। माहिरा के मना करने पर आरव के चेहरे के भाव सख्त हो गए। इस पर उसने स्ट्रिक्टली कहा, माही, आई एम आस्किंग फॉर माई मोबाइल। आरव के गुस्सा करने पर माहिरा को उसका फोन निकालकर देना ही पड़ा। आरव ने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर कबीर के वॉइस नोट्स आए हुए थे। कबीर ने जल्दबाजी में आरव को काफी बार कॉल किया, लेकिन जब उसने कॉल पिक नहीं किया तो उसने वॉइस नोट में गौरवी जी की तबीयत खराब होने की बात बता दी थी। कबीर के वॉइस नोट सुनते ही आरव परेशान हो गया। वो माहिरा से गुस्से में बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि बिना बताए नहीं आना चाहिए था, अब देख लो क्या हो रहा है, हमें अभी इंडिया जाना होगा और आई होप कि कुछ गलत ना हुआ हो। आरव ने तुरंत उन दोनों के लिए इंडिया जाने की इमरजेंसी टिकट बुक की। माहिरा को कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरव के सामने उसका बस नहीं चला और वो दोनों वहां से मुंबई जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर गौरवी जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो वहां तक पहुंचा तब सुबह के 6 बज चुके थे। अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से ज्यादातर नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स भी जा चुके थे। कबीर गौरवी जी को हॉस्पिटल लेकर आया, तब तक उनकी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। गौरवी जी को तुरंत प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया और वहां सीनियर नर्सेज उनका इनिशियल ट्रीटमेंट को देखने लगी। कबीर उनके पास ही था। किसी डॉक्टर को वहां ना देखकर उसने घबराते हुए कहा, क्या कोई भी डॉक्टर नहीं है? आप एक बार कॉल करके किसी न्यूरोसर्जन को बुला दीजिए। सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, पर इस टाइम तक सारे डॉक्टर जा चुके होते हैं। न्यू शिफ्ट सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होगी। हम हॉस्पिटल के किसी न्यूरोसर्जन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप इनकी पुरानी रिपोर्ट्स यहाँ सबमिट कर दीजिए और कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लें। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले नर्स ने कबीर को सब कुछ समझा दिया। कबीर का गौरवी जी को अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने नर्स से कहा, देखिए, ये गौरवी खुराना है, ये हॉस्पिटल इन्हीं का है, फॉर्मेलिटी होती रहेगी, सबसे पहले आप इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ठीक है, नर्स ने जवाब दिया और फिर उसने दूसरी नर्स की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर ओबेरॉय अभी तक हॉस्पिटल में ही होगी, आज वो थोड़ा लेट आई थी तो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट मॉर्निंग में करने की बात कही थी, वो भी न्यूरोसर्जन ही है, अगर वो हॉस्पिटल में ही है तो उन्हें बुला लो, वरना डॉक्टर सिंघानिया को कॉल करो। दूसरी नर्स ने उसकी बात पर हामी भरी और दौड़कर आयु के केबिन में गई। आयु अभी तक हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन वो काफी थकी हुई थी। नर्स को वहां देखते ही आयु ने थके हुए स्वर में कहा, प्लीज सिस्टर, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मुझे किसी को ट्रीट करने को मत कहिएगा, मैं जनरल वार्ड में नहीं जाने वाली, एक्चुअली डॉक्टर अभी अभी एक केस आया है, हालत काफी खराब है, आपको उन्हें अर्जेंटली ट्रीट करना होगा, उन्हें एक न्यूरोसर्जन की जरूरत है, नर्स ने जल्दबाजी में कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से उठकर उसके साथ गई। गौरवी जी के कुछ जरूरी टेस्ट किए जा रहे थे, वो वहां सबसे पहले कबीर से मिली। आयु को वहां देखकर कबीर ने राहत की सांस ली। वो उसके पास जाकर बोला, प्लीज डॉक्टर, मेरी दादी को कुछ ना होना चाहिए, अचानक से वो बेहोश हो गई, आई होप सब ठीक है, आप उनकी रिपोर्ट्स लाए हैं? आयु ने पूछा। मेरे पास फिजिकल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पीडीएफ पड़ा है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कबीर बोला। उसकी जरूरत नहीं है, हम उनकी केस हिस्ट्री हॉस्पिटल के डेटा से कलेक्ट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी, शी विल बी फाइन, आप प्लीज बाहर चले जाइए, आयु ने जवाब दिया और उसने कबीर को बाहर भेज दिया। वो इस वक्त नर्स के साथ अंदर रूम में थी और गौरवी जी की रिपोर्ट्स देखते हुए उनका चेकअप कर रही थी। रिपोर्ट देखते हुए आयु ने घबराई आवाज में कहा, व्हाट द हेल, इनके ब्रेन में सिस्ट है।
लगता है मैम इन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, नर्स ने कहा। इनकी हालत देखकर साफ है कि इनका सिस्ट फटने लगा है। तुम ऐसा करो, अयान को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो और जल्दी से ओटी रेडी करवाओ। वी नीड टू ट्रीट हर राइट अवे, वरना इनकी जान चली जाएगी। आयु ने ऑर्डर किया और गौरवी जी की सर्जरी की तैयारी करवाने लगी। वो एक जूनियर डॉक्टर थी, इस वजह से उसे किसी भी सर्जरी को खुद से हेड करने की परमिशन नहीं थी जब तक कि पेशेंट की फैमिली मेंबर इजाजत ना दे। नर्स ने अयान से कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में आयु ने सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए सर्जरी को खुद ही करने का डिसीजन दिया। गौरवी जी की सर्जरी की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर में आयु के अलावा और कोई जूनियर या सीनियर डॉक्टर नहीं था, वो खुद ही इस सर्जरी को करने जा रही थी। ओटी में जाने से पहले आयु कबीर के पास गई और कहा, अंदर जाने से पहले बता देती हूँ कि ये मेरी पहली सर्जरी है जो मैं हेड कर रही हूँ, पर साथ ही ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एज पर रूल्स मुझे ये सर्जरी करने से पहले आपकी परमिशन चाहिए होगी। अगर ये आपकी पहली सर्जरी है तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये सर्जरी करने की परमिशन नहीं दूंगा डॉक्टर, मैं दादी की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। आप किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाकर ही ये सर्जरी स्टार्ट करें, कबीर ने सख्त शब्दों में कहा। वो गौरवी जी की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम किसी सीनियर डॉक्टर का वेट करें, पहले ही बाकी सारे टेस्ट और यहाँ लाने में काफी देर हो चुकी है, आयु ने जवाब दिया।
गौरवी जी की सिचुएशन काफी सीरियस थी, मजबूरी में कबीर को आयु को सर्जरी हेड करने की परमिशन देनी ही पड़ी। कबीर के हामी भरते ही आयु अंदर चली गई और अगले कुछ मिनट में ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑन हो गई थी। कबीर वहां अकेला था, वो आरव के आने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं साथ ही अंदर गौरवी की सर्जरी चालू हो चुकी थी।